पहली सूरत मोहम्मद है। दिल अंदर से मेरा उछल रहा है, खौफ भी है और उम्मीद भी है। सूरत मोहम्मद तो क्या है, अपने नाम की तरह खूबसूरत भी है, और जो नबी सल्लम की खूबियां, जो आपका किरदार, एक नबी होने के नाते जो अल्लाह ने आपको मिशन दिया और जो आपका तरीका जिंदगी था, वो सब कुछ आपको इस एक सूरत में दिखेगा। आइए सबसे पहले जरा सूरत अलअहकाफ के साथ इसका रब जोड़ते हैं, ताकि कल हम ये ना कह सके कि कुरान में बहुत ही बातें टूटी फूटी हैं। तो कौमे आद की हलाकत अभी हमने पढ़ी सूरत अलअहकाफ में, सूरत मोहम्मद में मुशरिकीने मक्का की हलाकत है। फर्क लिख लीजिए, यहाँ मुझे पता है कि आप अब जहनी तौर पे मेच्योर हो चुके हैं। अंबिया कराम की कौमों के साथ जो कुछ हुआ, हमने इसको सूरत अल अराफ से लेकर आज तक पढ़ा। लिख लें, बेशक फायदा देगी ये बात, क्योंकि आप वेस्ट में रहते हैं। बहुत सारे लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक इल्जाम लगाते हैं कि आपने तलवार के जोर पे दीन फैलाया, और आप तो ब्लड थर्स्टी थे नाउज़ुबिल्ला, और आपकी जंगों को बुनियाद बनाकर इस्लाम को टेररिज्म कहा जाता है। तो जरा सा इस मौके पे बेहतरीन वक्त है जहां मैं आपकी चंद जुमलों में मदद कर सकूं तो कर दूं। वही काम जो कौम नूह से बारिशों के जरिए यानी पानी के जरिए लिया गया, जो कौम आद के जरिए हवाओं से काम लिया गया, कौम समूद पे जलजले से लिया गया। आप समझ गए हैं, हर कौम किसी जमीनी आफत की वजह से मारी गई, या आसमानी नेचुरल डिजास्टर्स। पिछली कौमों को अल्लाह ने ब्राहे रास्त डायरेक्टली अपनी कुछ मखलूकात के जरिए खत्म किया, क्योंकि हवा भी अल्लाह की मखलूक है, तो बारिश भी अल्लाह की मखलूक है, तो जमीन भी अल्लाह की मखलूक है। बस वापिस आइए, वो काम जो अल्लाह ताला ने पिछले नबियों के साथ नेचुरल डिसऑर्डर से किया, वही काम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मनों को सहाबाए कराम की तलवारों के जरिए खत्म करके लिया। बात समझ गए, कौमे नूह पे कोई तलवार नहीं उठी, अल्लाह ने आसमान से जमीन से पानी लेके खत्म कर दिया मामला। एक असूल लिख लें अल्लाह का, बड़ा प्यारा असूल है, कि जब किसी जगह कोई नबी आ जाए, अब ये खत्म हो गया, अब रिसालत भी खत्म, नबुवत भी खत्म, तो ये असूल भी खत्म। लेकिन अल्लाह की सुन्नत है कि जिस कौम के पास ब्राह रास्त कोई नबी आ जाए, कोई रसूल आ जाए, फिर वो कौम उसको ना माने, जैसे मक्का वालों ने नहीं माना, तो अल्लाह उसको खत्म कर देगा। इसको अल्लाह तआला की पकड़ का कानून कह दें। अब इस कानून की रोशनी में जब 13 साल की हुज्जत पूरी हुई, तो मक्का वाले जो नबी सल्लम की सारी मोहब्बतों और आपकी सारी बेलौस कोशिशों के बावजूद नहीं मान रहे थे, उनके साथ क्या होना चाहिए था? या आसमान से कोई अजाब आता, या जमीन से आता, और मक्का के वो सब लोग मक्का में ही दफन हो जाते? ये हो सकता था, लेकिन अल्लाह ने इस कौम के साथ ऐसा नहीं किया। क्यों इसलिए नहीं किया? नंबर एक, पिछली कौमों के हालात पढ़ते हुए याद रखिए कि दुनिया बहुत थोड़े से लोगों पे मोहित थी, उनके फॉलोअर्स भी अगर थोड़े थे ना, तो उनके डिनायर्स भी थोड़े ही थे। तो एक डिजास्टर आया, सब खत्म। अल्लाह के नबी के दौर तक लोगों की तादाद लाखों में पहुंच चुकी थी, एक बात। और दूसरी बात है कि आप खातमुन नबीयीन थे, आप आखिरी नबी थे, अल्लाह ने आपके जरिए दुनिया को आगे बढ़ाना था। पिछली कौमें पूरी तबाह हुई और उनसे कुछ गिनती के लोग, मतलब कौम नूह में से 60-70 लोग बचे थे जो कश्ती में बैठे, एक नई दुनिया बात हुई, जिसको आप आदमे सानी भी कहते हैं। अगर अल्लाह के नबी सल्लम के दौर के मुशरिक सारों के सारों को मार दिया जाता, तो फिर दुनिया का आगे वजूद किस तरह से चलता? तो लिहाजा आप सूरत मोहम्मद, जिसका एक दूसरा नाम सूरत किताल भी है, बड़ी चुभती है ये सूरत, रोड़ा बन के अटकती है लोगों के दिलों दिमागों में। और 38 आयात है सिर्फ इसकी, 47 नंबर सूरह है। आइए जरा एक हल्की सी झांक या एक छोटी सी झलकियां देख लेते हैं इस सूरत की। इसका मरकजी मजमून क्या है, कि दुनिया और आखिरत की कामयाबी के लिए अल्लाह की राह में माल का जिहाद करो, यानी इन्फाक करो। उम्मत मुस्लिमा को अपना माल लगाना होगा इन्फाक, दीन को फैलाने में, दीन को चलाने में, मस्जिदें बनाने में, मस्जिदों को चलाने में, इस्लाम की नशर व इशात में, हर चीज में लगाना होगा। साथ ही साथ जान का जिहाद यानी किताल भी जरूरी है। ये दोनों चीजों को ना आप एक दूसरे से रिप्लेस कर सकते हैं और ना एक को लेके दूसरी को कंडेम कर सकते हैं। वरना अल्लाह ताला बुजदिल और बखील कौमों को हटाकर फैयाज और बहादुर कौमें पैदा करेगा। यार ये आयत इसी सूरत के एंड के बाद कि अल्लाह तुम्हें उठाकर फेंकेगा और रिवॉर्ड्स आ जाएंगे। कल 260 लोगों की खबर मिली एक मस्जिद में कलमा पढ़ा। ये जो 2-3 महीने हैं मेरा तो दिल खिल जाता है। कल रात भी हम एक मस्जिद में थे और सिस्टर्स आपस में बातें करी, फला मस्जिद में इकट्ठे इतने लोगों ने कलमा पढ़ा। जो ब्रदर आए तो उन्होंने किसी और मुल्क का बताया, यानी लोग कोरस में कलमे पढ़ रहे हैं। एक सिस्टर ने हेल्प मांगी थी कि उनके हस्बैंड वेबसाइट के थ्रू क्वेश्चंस के आंसर्स देते हैं लोगों के इस्लाम से मुतल्लिक। जब से ये गजा की जंग लगी है वो कह रहे हैं कि इतना ओवरवेलमिंग किस्म का लोड है ईमेल पे कि वो अकेले हैंडल नहीं कर पा रहे, एंड ही नीड वॉलंटियर्स टू गिव द आंसर्स। अल्लाह को नहीं पता, आपको कुछ ज्यादा तरस आता है लोगों पे, आप नहीं समझ रहे कि अल्लाह का क्या प्लान है। ये अल्लाह के वादे पूरे होते हैं। तो याद रखिए, जब बोन मुस्लिम जैसे हम जैसे लोग बिगड़े हुए और अपने कंफर्ट जोन में रहने वाले, अगर हम अपना वो काम छोड़ देंगे जिसके लिए अल्लाह के नबी ने जिंदगी खपाई, तो फिर आप सोच लीजिए कि अल्लाह को अपने काम लेने आते हैं। आज हम वक्त लगाते हुए डरते हैं, माल लगाते हुए डरते हैं, जान तो निकल ही जाती है, जान निकालते हुए लफ्ज जिहाद बोलते हुए डरते हैं, करना तो दूर की बात है। तो मुझे बताइए कि फिर अल्लाह ऐसे लोगों के लिए वो रिवॉर्ड्स को क्यों ना लाए कि जिनके अंदर ईमान की हरारत होती है। तो बहरहाल ये तो एक अजीब सा टॉपिक है, इस पे तो बस वक्त के मुताबिक ही बात करनी होगी। तो मतनी सूरतों में से ये सूरत अंबिया कराम के नामों में से एक सूरत, पीछे आप पढ़ चुके सूरत हूद, सूरत यूनस और सूरत यूसुफ, और ये सूरत अब मोहम्मद है। अब एक सूरत और आगे आएगी 29वें पारे में, सूरत नूह। इसी सूरत का दूसरा नाम सूरत किताल भी है। इसमें जन्नत के दिलकश मनाजर अभी आप सुनने वाले हैं। 2 हिजरी में शाबान या रमजान के महीने में इसका नजूल हुआ, गज़वे बदर से थोड़ा सा पहले। क्यों अभी बदर हुई नहीं और ये सूरत क्यों आ गई? ताकि मुसलमानों में जज्बे जिहाद बुलंद किया जाए और जज्बे इन्फाक को बढ़ाया जाए। देखिए दीन के काम माल के बगैर नहीं होते। एक वक्त का खाना नहीं आप किसी को खिला सकते माल के बगैर, तो कहाँ इंसानियत को सर्व करना हो। तो लिहाजा ये दोनों चीजें हमेशा साथ साथ गई। मुसलमानों के हाथों कुरैश के खिलाफ जिहाद का हुक्म इस सूरत में आप देख रहे हैं। बिल वास्ता अल्लाह ने नबी के दुश्मनों को हलाक करवाया। तो आप देखिए हमने मुस्तकिल हवामीम वाली 7 सूरतें पढ़ी हैं और वो सूरतों का जो मिजाज था उसके बाद अब ये 3 सूरतें मोहम्मद, फत और हुजरात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये 3 मुस्तकिल मदनी सूरतें आप पढ़ने लगे, इसलिए बोझल है। तभी मैंने आज पारे को बैलेंस करना है इंशाल्लाह कि इधर थोड़ा वक्त लग भी जाए तो फिर आगे ना लगे। अब यहाँ सूरत काफ से आगे सूरत वाकया तक फिर 7 मक्की सूरतें आनी है। आप कहेंगे ये क्या होती है? आपको पता है भिंडियों की क्या तासीर है और करेले गर्म होते हैं कि नहीं, और फलां चीज की क्या है? हमें तो एक एक सब्जी का पता है, एक एक मसाले का पता है, ये जीरा ठंडा होता है कि सौंफ गर्म होती है कि क्या होता है। कुरान से दोस्ती कीजिए, ये आपका घर है, ये आपकी फैमिली है, आपको अपने खानदान का पता और आपको कुरान की सूरतों का नहीं पता। तो बहरहाल ये मिजाज नहीं पता तो सूरतों को समझ भी नहीं सकते, तभी तो भी गलत फहमियां होती हैं। और आप देखेंगे कि जब सूरत काफ से वाकया तक 7 मक्की सूरतें आएंगी ना, फिर उसके बाद बिल्कुल तरतीब से 10 मदनी सूरतें आएंगी जिनको आप मुसब्बिहात भी कहते हैं, सब्बह या युसब्बिहु से आती है। तो बहरहाल ये तो इन डेप्थ में हम पढ़ते ही हैं, लेकिन यहाँ आइए अल्लाह की मदद के वादे यहाँ इस सूरत में दिख रहे हैं। है जिहाद का हुक्म लेकिन इतने खूबसूरत तरीके से, कैसे लगता है कि जिंदगी का हुक्म है, जान जाने का नहीं, जान देने का नहीं, जान मिलने का या जिंदगी मिलने का हुक्म है। ईमान वालों और कुफार का तकाबुल मिलेगा आपको, और अल्लाह के लिए यहाँ लफ्ज बार बार मौला आएगा, और बिल्कुल सूरत के एंड पे कानून हलाकत। ये जो मैंने अभी अपने लफ्जों में आपको एक थोड़ा सा नोट दिया है ना कि अल्लाह ने नबी सल्लम के मुखालिफिन को हलाक करना था, पिछले कौमों को अल्लाह ने आसमानी और जमीनी आफात से हलाक किया। इधर कानून इस्तिब्दाल भी है, एक कौम को बदल कर दूसरी को ले आना। आज जैसे भी कह दिया कि रिवर्ट्स आ रहे हैं और मुसलमान दीन से निकल रहे हैं। जिहाद की कामयाबी की शराइत भी है, और छोटी सी सूरत है लेकिन तकवा पर इसमें 3 आयतें हैं, 15, 17 और 36। मुनाफिकीन की भी बातें इसमें, वो तो हर जगह होगी, जहां जिहाद का लफ्ज आएगा वहां मुनाफिक का लफ्ज आएगा। 3 आयत इसमें मुनाफिकीन के बारे में, और जंग के अहकामात और फलसफा जिहाद भी है। मेरा लाइक 80% बात आपको सूरत की समझ आ गई है, बाकी कोशिश करते हैं तर्जमे के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आयत नंबर 1 से 11, 1 to 11। अल्लाह ताला की मदद किन के लिए आती है? अब यहाँ लिखे नस्रु मिन अल्लाह व फतहुन करीब, किन के लिए? अल्लसीन कफरू व सद्दू अन सबीलिल्लाह, डायरेक्ट सूरत शुरू हो रही है, ना कोई हरूफ मुखत्ता आता है, ना कुरान की कोई आयत है, ना अल्लाह ताला की को बढ़ाई है, ना सब्बा है, ना युसब भी हुआ है, क्योंकि ये तलवार लेकर हाथ में उतरी सूरत। क्या फरमाया? जिन लोगों ने कुफर किया और अल्लाह की राह से रोका, अल्लाह ने इनके अमाल बर्बाद कर दिए, और जो लोग ईमान लाए, अच्छे काम किए और इस पर ईमान भी लाए, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारी गई, इसको हाईलाइट करिए, और दरअसल इनके रब की तरफ से सच्चा दीन भी वही है, अल्लाह ने इनके गुनाह दूर कर दिए और इनके हाल की इसलाह भी कर दी। अल्लाह हमारे भी गुनाह दूर करके हमारे हाल की भी इसलाह कर दे। ये इसलिए कि कुफार ने बातिल की पैरवी की और मोमिनों ने इस दीन हक की इत्तबा की जो इनके अल्लाह की तरफ से है। अल्लाह ताला लोगों को इनके अहवाल इसी तरह बताता है। और जब कुफार से आप कामना सामना हो तो गर्दनों पर वार मारो, यानी उनको टॉर्चर नहीं दो, डायरेक्ट उनको बगैर तकलीफ दिए जिस्म से गर्दन का बोझ हटा दो। ये वॉर प्रैक्टिस है, ये नहीं कहा कि उनको छोटी छोटी मौत दो, टॉर्चर दो, उनको सेल्स में बंद करो, बिजली के झटके दो, ये करो वो करो, बल्कि बिल्कुल सीधा सा काम करो, और जब इनको अच्छी तरह से कुचल डालो तब खूब मजबूत कैदोबंद से गिरफ्तार करो। फिर इख्तियार है कि ख्वाह एहसान रखकर छोड़ दो या फिदिया लेकर, यहाँ तक कि लड़ाई अपने हथियार रख दे, यानी कि लड़ाई करने वाले हथियार रखे, लड़ाई हथियार रख दे। ये बड़ा प्यारा मुहावरा है, यही हुक्म है कि अगर अल्लाह चाहता तो खुद ही इनसे बदला ले लेता, लेकिन इसका मंशा यानी अल्लाह की ख्वाहिश, अल्लाह की मर्जी क्या है कि तुम में से एक का इम्तिहान दूसरे से ले ले, और जो लोग अल्लाह की राह में शहीद कर दिए जाते हैं, अल्लाह इनके अमाल हरगिज़ जाया न करेगा, इन्हें राह दिखाएगा और इनके हालात की इसलाह कर देगा, और इन्हें इस जन्नत में ले जाएगा जिससे इन्हें पहले से शनासा कर दिया। साथ साथ जंगे और साथ साथ जन्नत के मुकाम, और आपके लिए पुकार, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम। ऐ ईमान वालों, अगर तुम अल्लाह के दीन की मदद करोगे तो वो तुम्हारी मदद करेगा और तुम्हें साबित कदम रखेगा। दोबारा पढ़ो। हम कहते हमारे पास वक्त ही नहीं, हमारे पास माल ही नहीं, हमारे पास स्किल्स ही नहीं, हमारे तो घर ही नहीं, हमारी तो गाड़ियां ही नहीं। अल्लाह कहता तुम मेरे दीन की मदद करो, मैं तुम्हारी करूंगा। तुम्हारे पास क्यों नहीं है? इसलिए कि तुम दीन की मदद नहीं कर रहे। और साबित कदमी कहाँ से आए? कच्ची बुनियादों पे बड़ी इमारतें तो नहीं खड़ी की जाती। और जो लोग काफिर हुए इनके लिए हलाकत हो, अल्लाह ताला इनके अमाल गारत कर देगा। ये इसलिए कि वो अल्लाह की नाजिल करदा चीज से नाखुश हुए। ये दूसरी जगह आई ये बात, इसको भी नोट करें। लोगों को अल्लाह का नाजिल किया हुआ ये कलाम अच्छा नहीं लगता, बस अल्लाह ताला ने भी इनके अमाल जाया कर दिए। गिनते जाइए हफ्ते अमाल का तस्करा कितनी बार। क्या इन लोगों ने जमीन में चल फिर कर इसका मुआयना नहीं किया? इनसे पहले के लोगों का क्या नतीजा हुआ? अल्लाह ने इन्हें हलाक कर दिया, और कुफार के लिए इस तरह की सजाएं हैं, वो इसलिए कि ईमान वालों का कारसाज यानी वली खुद अल्लाह है, और इसीलिए कुफार का कोई कारसाज नहीं। सुबहान अल्लाह। 4 आयतें ईमान से मुतल्लिक इस एक रुकू में। मोहम्मद नंबर 2 आयत, नेकियां बुराइयों को दूर कर देती हैं। कफ्फरान हम सैयातिहिम वस्लहबालहुम। अपने लिए अमल का नुक्ता लिखे। अगर पिछली जिंदगी गफलत में गुजर गई, मस्ती में गुजर गई, सरकशी में गुजर गई, तब भड़बड़ कर नेकियां कीजिए। वो जिस्म जिसको गुनाहों में पाल पोस के मोटा किया, उसको नेकियों में दुबला कीजिए। फिर मोहम्मद 3, मोमिन अपने रब की हर पुकार पे लब्बैक कहता है। आयत 7, जो दीन का काम करने के लिए हर वक्त तैयार हो। ये हर वक्त में मैंने जोर दिया ना, यही है असल में नुक्ता। दीन का काम करने के लिए बहुत सारे हैं, पर कब? जब उनको सूट करे, जब उनके लिए सहूलत हो, जब उनको फासद करे, ये बस मुझे सूट नहीं करता, ये करता नहीं, ये दिन ठीक नहीं, वो नहीं ठीक, नहीं, दौरे कुरान खत्म, जान पूरी बच गई, शुक्र अल्लाह का, बच के आगे मैदान है कुरान से, दौरे कुरान से जिंदा बच के आ गया, अल्लाह तेरा शुक्र, कोई लड़ाई नहीं हुई, कोई घर नहीं टूटा, मियाँ साहब नहीं रूठे, सासू अम्मा ने ताना नहीं दिया। ये जो सहाबा और हमारे बीच का एक बुनियादी फर्क है ना, वो ये है, वो 24/7 मुस्लिम थे, 4 सीजन्स के मुस्लिम्स थे, सुबह के हैं तो शाम के भी हैं, रात के हैं तो दिन के भी हैं, हम सीजनल मुस्लिम्स। ये सीजन चल रहा है, मस्जिदों में कम हो गई है तादाद, तरावियों में आकर देखिए आधी रह गई मस्जिद, शुरू में जोश, बीच में ठंडे, फिर जरा देखिएगा 21वीं की रात और 27वीं की रात, हमारा ईमान उबल पड़ रहा होगा, और जिस रात मस्जिदों में मिठाइयों के डब्बे बंटने हैं उस रात देखिएगा, कल मगरिब उस मस्जिद में पड़ी जहां इफ्तारी नहीं थी, जहां मगरिब पड़ी और इफ्तारी नहीं थी, मैं अपनी उंगलियों पे गिन के बता सकती हूँ कितने नमाजी थे, आपके सर ने नमाज पढ़ाई, और जिस मस्जिद में इफ्तारी थी वहां से एक सिस्टर आई जो ईशा में मुझे मिली, कह रही है कि मस्जिद में तिल रखने की जगह नहीं, लाइनों में लग लग के बॉक्सेस और डब्बे और खाना ले रहे, ये तो मैंने भी देखा है, क्या हो गया हमें, खाने का एक डब्बा अटेम्प्ट करता, और अल्लाह की बात, अल्लाह का दीन, अल्लाह का कलाम, एक बात समझ आ जाती है ना किसी स्पीकर की, तो नशा आता है, ऐसा मजे का नशे से मेरा ये कि सुकून मिलता है, चला मैं तो जब भी कभी बैठती हूँ ऐसी जगह तो मैं ये सोचती हूँ कि जो मेरे साथ बैठे होते हैं उनको क्या लग रहा होता है, वो किधर थकते होंगे, उनको कैसा लगता होगा, उनकी क्या फीलिंग्स होती हैं। तो याद रखिए, जो जमना चाहता है अल्लाह उसको जमाता है, तो अल्लाह की मदद पाने के लिए अल्लाह के रास्ते के अंसार बन जाइए, आयत 11 का ये पैगाम है। अब जरा इस पूरे रुकू में जरा छोटे छोटे चंक्स को नोट करते हैं, एक तो देखिए अदल आमालहुम, आप अगर इसको ग्रामर की रोशनी में देखें ना, तो उनके आमाल भटक गए, ये क्या बात हुई, अमल कैसे भटकते हैं, यानी हो रहे थे शुरू में सही नियत से, बाद में नियत बदल गई, शुरू में कर रहे थे अल्लाह के लिए, बाद में करने लगे नफ्स के लिए, लोगों के लिए, कर रहे थे नेकियां लेकिन मुराद थी कोई दुनियादारी। देखिए एक मिसाल समझिए, आपका बच्चा जिसको आपने $10,000 और पता नहीं कितने पैसे लगाकर पूरा साल पढ़वाया, इम्तिहान देने गया, वापस आया, आप कहते बेटा पेपर कैसा था, कैसा रहा, ये तो कहते ये देखे मामा, हैं ये क्या, पेपर करके अपनी ही जेब में साथ ले आए, आपका तो बीपी लो हुआ के हुआ। अच्छा एक बच्चा तो ये है, इसकी माँ के ऊपर तो अल्लाह रहम कर दे, एक और बच्चा है उसी का दोस्त, दोस्तों एक ही जैसे होते हैं, पेपर किया तो एग्जामिनर को देने की बजाय बाहर वो जो चाय कॉफी बेच रहा था ना उसको दे आया, या अपने ही किसी दोस्त को दे आया, मुझे बताइए क्या इन दोनों को इम्तिहान के पर्चे के नंबर मिलने चाहिए, क्या इनको अगले ग्रेड में जाना चाहिए, पोजीशन होल्डर में आना चाहिए, ये हैं वो लोग अदल्ला वालहुम। ये सूरत पढ़ाते हुए खून खुश्क हो जाता है, यकीन करें पिछले सालों में एक साल में इस पूरे पारे का थीम ही हफ्ते अमल था, आमाल का जाया होना, आपको तय कि हफ्ते अमल क्या है, तौबा का मुतजाद है, तौबा क्या करती है, सारे गुनाहों को माफ कर देती है या करवा देती है, हफ्ते अमल आपकी नेकियों को जाया कर देता है, तौबा आपकी एट वंस होती है, अभी बैठे बैठे तौबा करें गुनाह माफ, साफ सुथरे वाक्य सुन चुके हैं आप पीछे भी कि बारिश शुरू हो गई। हफ्ते अमल दो तरह से होता है, देखिए अरबी जुबान में ना दो लफ्ज है, हबत है किधर है, एक बतला भी है बातिल, ला तुबतिलु आमालकुम भी कुरान में आता है, कभी कभी इंसान के अमाल किसी एक अमल की वजह से जाया हो जाते हैं, और कभी थोड़ा थोड़ा कर कर के आहिस्ता में सब कुछ ही जाया होता है, या ऐसे ही कि कभी ऑर्गेनाइजेशन थोड़ी थोड़ी करके डूबती है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां पीछे से लॉस ही लॉस है लेकिन सामने बड़ी रेल पेल दिखाते हैं मैनेजर्स, क्योंकि हमारे गबन और हमारी चीजें ना छुपे, उस दिन फैक्ट्री पूरी क्लैप कर जाती है जिस दिन बैंकरप्सी फाइल होती है। तो अल्लाह से ये दुआ कीजिए कि अल्लाह मेरे आपके अमाल को जाया ना करे, ये तहज्जुद, ये नमाजें, ये दरस व तदरीस, ये कुरान पढ़ना, ये रात के सेशन बड़े जोश से हम करते हैं जी, ये हमारा सहूर सेशन है, ये हमारा दौरे कुरान है, ये या अय्युहल लज़ीन आमनू आ रहा है, ये इसके बाद हमने ये करना है वो करना है, अल्लाह ना करे आपके मेरे अमल ज़ाया हो जाए, एक चीज की मौजूदगी में बड़े से बड़े अमल ज़ाया, और वो है कुफर, तो कुफर के साथ किए हुए अमाल अदल्ला अमालकुम ज़ाया हो जाते हैं। आप दुनियावी चीजों में इसकी बहुत सारी मिसालें खुद भी समझ सकती हैं, आपके खाने में, चावलों में एक सुसरी निकल आए, सुंडी निकल आए, कीड़ा निकल आए, पूरा पतीला फेंकते हैं। जैम की बोतल गिरे और उसमें एक छोटी सी, एक जर्रा शीशे का दिख जाए, पूरी बोतल फेंकते हैं। अल्लाह को आपके मेरे अमाल की बिल्कुल जरूरत नहीं होगी अगर आपने मैंने सही दिल, सही नीयत, सही इरादे से ना किए। इसी तरह कुफार को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस्लाम का रास्ता रोकने के रास्ते की जो कोशिशें है ना, उसको जाया कर दिया जाएगा। ये भी इसकी एक तफसीर आती है, यानी तुम जो मर्जी रोड़े अटका लो, मुंह की भूखों से ये चिराग बुझाया ना जाएगा। ये भी अदल्ला मालहम की बात है। फिर आप देखिए आयत 7 में, इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, पूरे यकीन से, पूरे कन्विक्शन के साथ, जिसको कह सकती हूँ कि जितना को यकीन और श्योरिटी और इंश्योरेंस लेके कह सके, उतने यकीन से करूंगी कि जो अल्लाह के दीन की मदद करता है, अल्लाह ताला उसके मामलात को अपने हाथ में ले लेता है। लो मैं तुम्हारे करता हूँ, तुम मेरे करो। अल्लाह के राह के राही बन के तो देखिए अल्लाह कैसे आपके काम संवारता है। आप में क्या करेंगे? देखिए आपका 2-3 साल का बच्चा जूता पहनने में 10 मिनट लगा देता है और आपको जल्दी है निकलने के, और वो ये कि जिद कर रहा है, मैं खुद पहनूंगा, मैं खुद पहनूंगा। तो फिर अखीर आप उसका हाथ भी पकड़ते हैं, जूता पकड़ के पहना के उसको खींचते हुए गाड़ी में नहीं ले जाते, मैं खुद खाऊंगा। सारे चावल तो नीचे गिर रहे हैं, एक दो दाना बेचारे गरीब बच्चे के मुंह में गया चम्मच से। बस इससे समझ लें, आपको अपना बच्चा जितना ना समझ लग रहा होता है ना ऐसे बात करते हुए, अल्लाह को भी और फरिश्तों को भी हम इतने ही ना समझ देखते हैं। नहीं नहीं मेरे अपने ही काम बड़े हैं, आज मुझे छुट्टी चाहिए, आई एम ऑन लीव, चलो रो लीव पे, फिर देखना क्या होता है। अल्लाह ताला के काम अगर करने का मौका मिल गया तो घुसे रहे, इधर से एक दफा गए तो बैक टू द क्यू। आपने देखना लाइनों में लगे हुए एयरपोर्ट्स पे, खाने की दुकानों पे, एक दफा क्यू से निकल जाए तो गो बैक। ये आपसे मुझसे अगर अल्लाह ने कोई छोटा मोटा काम ले लिया ना दौरे कुरान में, तो डोंट लीव द क्यू। मेरे से आपसे अच्छे लोग आएंगे इंशाल्लाह। अल्लाह का दीन ना मेरा मोहताज है ना आपका मोहताज है, ना अल्लाह के दीन को उस्तादों की कोई परवाह है, ना एडमिन की परवाह है, ना जिम्मेदारान का अल्लाह को कोई बहुत ही ज्यादा कोई भरोसा है, और ना अंसारुल्लाह का। ये तो आपकी मेरी अपनी खुशबख्ती है। वो कहते हैं ना कि तूने खरीद के अनमोल कर दिया, वरना हमें कौन पूछता था दुनिया के बाजार में, क्या हमारे मुंह और क्या मसूर की दालें। इतना हमें मान है अपनी नेकियों पे, चार नेकियां करके हम ऐसे जन्नत के सर्टिफिकेट जेबों में डालकर फिरते हैं। तो याद रखिए अल्लाह ने जन्नत का तذکرہ भी कर दिया इस सूरत में, और जन्नत की कीमत भी बता दी कि तुम ला इलाहा इल्लल्लाह का वादा पूरा करो, उसके तकाजे पूरे करो, मैं जन्नत के वादे पूरे करूंगा और अपना दीदार भी कराऊंगा और अपनी रजा भी दूंगा। फिर इसमें एक जुमला 2 दफा आया इस रुकू में कि उनको बिल्कुल नहीं अच्छा लगा, मानजल्ला, यानी अल्लाह ने जो शरीयत या कुरान जो दीन नबी पे उतारा ना, लोगों को अच्छा नहीं लगा। मक्का वालों को नहीं था अच्छा लगता, मदीना वालों को भी नहीं अच्छा लगा, अब्दुल्ला बिन उबई का क्या मसला था, उसको यही नहीं था अच्छा लगता कि ये क्या बातें करता है, अबू जहल का क्या मसला था, उसके तो अकवाल है किताबों में, कहता था मोहम्मद तू सच्चा है, मेरा दिल गवाही देता है तू सच्चा है, पर मेरा मसला यह है कि अगर आज मैं कलमा पढ़ लूं तो कल से मुझे फिर पाबंदियां लग जाएंगी, मुझे ये भी छोड़ो वो भी छोड़ो ये भी छोड़ो और ये करो वो करो, और अभी मैं इसके लिए तैयार नहीं। वो तो उसने मुंह से कह दिया होगा ना, उसकी जरूरत थी, वो अरब था। आज उम्मत मुस्लिमा के अक्सर लोग जुबान हाल से ये एटीट्यूड शो करते हैं, चुप करो तरावियां पढ़ो जाओ घर, कौन सा समझ आना, कुरान खानी करो करो जाओ जाओ उस पारे, और गिनते और नापते और इंची टेपें लेकर और वेइंग मशीनें लेके फिरते हैं, इतने कुरान इतने उस पारे इतनी नेकियां इतने, फिर लफ्ज गिनते हैं एक लफ्ज पे इतनी, अच्छा माशाल्लाह मरहूम के लिए इतने कुरान पढ़े गए, और बिठाएं इसी कुरान के सिर्फ 26वें पारे को पढ़ने के लिए, कहता छोड़ो नहीं। और तसल्ली क्या कहते, नहीं नहीं ये पता नहीं क्या मसलक होंगे क्या फिरके होंगे, अल्लाह के बंदो कुरान के तर्जमे का क्या फिरका है, आप सब गवाही देते हैं, मुझे भी किसी ने, आप लोगों में से बाद में आउट ऑफ दी माइक पे थे हम, उन्होंने खुद भी ये बात कही, मैं आज आपसे माइक पे पूछ रही हूँ, लाइव सेशन जा रहा है पूरी दुनिया में इस वक्त भी माशाल्लाह, आपने इन 25 पारों में कोई मसलक कोई जमात कोई फिरके की बात सुनी? तो अगर जो कुरान पढ़ने आते हैं तो तर्जमा ही सुन के जाते हैं ना, तो महरूम ना रह गए वो लोग, फिरकों ने नहीं काम आना, जमातों ने काम नहीं आना। आज उम्मत मुस्लिमा के सीने पे तलवार रख के और गोलियां बरसा रहे काफिर, वो आपके किसी मसलक और फिरके के नाम पे नहीं पचा रहा, वो आपके नाम मुसलमान होने पे मारा। और सूरह बुरूज में हम पढ़ेंगे वमा नकमु मिनहुम इल्ला, इनका और कोई जुर्म नहीं है सिवाय इस बात पे इंतकाम लेते कहीं यूमिनु बिल्लाहिल अजीजिल हमीद, बेबसी बेहिसी की हद तक कि कुरान पढ़ने का शौक नहीं है, नो थैंक्स। जैसे कोई किसी को टिश्यू पेपर पेश करे तो कहता नहीं जरूरत, और कोई कान पे जू नहीं रुंगती। फिर हालात ये तो होंगे। देखिए आप खुद अपने जख्म में से पस निकाल लें हल्की हल्की दबा के ना, तो जख्म भी ठंडा हो जाता है और दर्द भी नहीं होता। और खुद नहीं निकाले डॉक्टर के पास जाएंगे ना, उसे कट लगाना है और आपकी भी चीखें निकल जानी है। ये अल्लाह इस वक्त हमारे जख्मों की पस निकलवा रहा है, मुसलमानों पे जुल्म सितम करा के। हमारे सोए हुए इस्लाम को अल्लाह कहता है अभी भी तुम नहीं जागोगे। अलम यानी लिल्लज़ीन आमनू अन तख्शअ क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह, कल के बारे में से आना है, उसको मिस ना कीजिएगा। और एक तरफ अल्लाह हमारी औलादों को हमारे सामने एक क्वेश्चन मार्क बना के खड़ा है, गम क्या हमें अपनी औलादों के? आज जरा सोचे उम्मत मुस्लिमा किस इंजाम की तरफ दो चार है। तो याद रखिए शरीयत का कोई भी मामला हो बिलफर्ज आपको अल्लाह के किसी हुक्म की मसले समझ नहीं आ रही, फिर भी नापसंदीदगी का इजहार ना करें। और मजाक करने वाला तो अपने लिए रुकावटें खड़ी करता है, कभी चार बीवियों का चार शादियों का मजाक ना करें, कभी होरों का मजाक ना करें, और कभी पर्दे और दाढ़ी और मुल्ला और मुसव्वि, इसका तो तौबा कर लीजिए क्योंकि अल्लाह को बहुत बुरा लगता है। एक जुमला लिखिए कि पहली दफा कुरान खुद को सुनाने के लिए पढ़े सुने। आप में जितने लोग इस वक्त फर्स्ट टाइम ये कुरान सुन रहे हैं मेरे साथ, अपने लिए सुने। अभी आपको इजाजत नहीं है कि जाके दूसरों को सुनाए, पहली दफा खुद सुने। अल्लाह से दुआ करें शरह सदर की, अमल की तौफीक मांगे, छोटे छोटे कदमों से चलती जाएं। जब जरा सा कुछ आपका वजन बन जाएगा ना, कुछ अपने वो ऊपर लगे हुए इल्जाम धुला लेंगे कि सारा कुछ करके अब खुद हमें नसीहत करने लगी हो, भूल गए हो आप क्या करते थे, फिर दूसरों को सुनाए। हम कच्चे पक्के इल्म के साथ आगे निकलते हैं और फिर दो चार बातें पढ़ती है तो हम भीगी बिल्ली बन के चिपक जाते हैं, नहीं 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 तौबा तौबा, आज के बाद किसी कुरान क्लास में नहीं जाऊंगी। फेथ इन एक्शन, हम अपनी जिंदगी में जितना ईमान को बढ़ाते जाएंगे गुनाहों से इतना दूर होते जाएंगे इंशाल्लाह। जिंदगी में शहादत हक के लिए जिद्दोजहद करेंगे तो मौत भी शहादत की आएगी। हमारे कल्चर में शहादत की मौत का शौक होता था, अब नहीं है। एक इस्लामिक स्कूल की टीचर ने मुझे खुद बताया एक मौके पे कि बच्चों को दुआ याद कराई, एल्बिस जदीदन इश हमीदन व मुत शहीदन, किसी को नया कपड़ा पहनना देखे नया लिबास पहनना देखे तो ये दुआ दीजिए, एल्बिस जदीदन नए कपड़े पहनो, इश हमीदन तुम्हारी तारीफ भी हो, वह मुत शहीदन और तुम्हें शहादत की मौत है। पेरेंट्स आ गए स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन के पास, पेरेंट्स आ गए कि आपके टीचर ने बच्चे को शहादत वाली दुआ क्यों सिखाई है, ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्ला, तो ला ऐसे माओ के बच्चों को शहीद कराए। ये आज उम्मत मुस्लिमा का वो कमजोर पॉइंट है कि जहां से दुश्मन हमें तोड़ रहा है। आज हम जिहाद के लफ्ज से भी डरते हैं, जिहाद करना तो दूर की बात है, वही याद रखे असली शेर और नकली शेर। कहले कि शेर की खाल में भूसा भरा हुआ है आज का मुसलमान, नकली मुसलमान है हम। सर्कस के शेर की तरह लोग हमें इशारों पर नचा रहे हैं और हमें अभी भी समझ नहीं आ रहा। कभी इफ्तारी का खाना मस्जिदों में खुलता देखा करें, अंदर नमाज चली जाती है और वो खाने पैसे टूट रहे होते हैं कि शायद ये अहले गजा हैं कि उनके पास खाना भी एक मदद आई है, फिर नहीं आनी, इधर ही रहना है, बाद में भी तुमने ही खाना है। लेकिन आज हम किधर चले गए, अल्लाह हमारी इसलाह फरमा दे। आगे देखिए रुकू नंबर 2, 12 से 19, काफिर की दुनिया में जिंदगी बजाहर अच्छी होती है मगर दिल बेसकून होता है। इन अल्लाह युदखिलुल्लज़ीना आमनू व आमिलुस सालिहात, जो लोग ईमान लाए और उन्होंने नेक आमाल किए इन्हें अल्लाह ताला यकीनन ऐसे बागों में दाखिल करेगा जिनके नीचे नहरें जारी हैं, और जो लोग काफिर हुए वो दुनिया ही का फायदा उठा रहे हैं और मिसल चुपायों के खा रहे हैं, इनका असल ठिकाना जहन्नुम है। हमने कितनी बस्तियों को जो ताकत में तेरी इस बस्ती से ज्यादा थी जिससे तुझे निकाला, हमने इन्हें हलाक कर दिया, पस इनका मददगार कोई ना उठा। क्या बस वो शख्स जो अपने परवरदिगार की तरफ से दलील पर हो इस शख्स जैसा हो सकता है जिसके लिए इसका बुरा काम खूबसूरत बना दिया गया, मुजयन कर दिया गया, और वो अपने नफ्स की ख्वाहिशों को मानने वाला यानी उसका पैरोकार हो गया। चलो इनको सुनाओ फिर जन्नत की कुछ बातें, अब जरा से तसव्वुर में लाइए जन्नत को। इस जन्नत की सिफत जिसका परहेजगारों से वादा किया गया है ये है कि इसमें पानी की नहरें हैं, जो बदबू करने वाला नहीं, और दूध की नहरें हैं जिनका मजा नहीं बदला, और शराब की नहरें हैं जिनमें पीने वालों के लिए बड़ी लज्जत है, और नहरें हैं शहद की जो बहुत साफ है, और इनके लिए वहां हर किस्म के मेवे हैं, और इनके रब की तरफ से मगफरत है। क्या ये मिसल उसके है जो हमेशा आग में रहने वाला है, और जिन्हें गर्म खौलता हुआ पानी पिलाया जाएगा, जो इनकी आंतों को टुकड़े टुकड़े कर देगा। दो मुख्तलिफ इंजाम, और इनमें बाज ऐसे भी हैं कि तेरी तरफ कान लगाते हैं, यहाँ तक कि जब तेरे पास से जाते हैं तो अहले इल्म से पूछते हैं कि इसने भी क्या कहा था, यानी गौर से सुनते नहीं और बाद में दूसरों से पूछ रहे होते हैं क्या बात हुई थी। यही लोग हैं जिनके दिलों पर अल्लाह ने मोहर कर दी, और वो अपनी ख्वाहिशों की पैरवी करते हैं, और जो लोग हिदायत चाहते हैं अल्लाह ने इन्हें हिदायत में बढ़ा दिया। अल्लाह हमें भी हिदायत में बढ़ा दे, और इन्हें इनकी परहेजगारी अता फरमाई। तो क्या ये कयामत का इंतजार कर रहे हैं कि वो इनके पास अचानक आ जाए? यकीनन इसकी अलामतें तो आ चुकी हैं, फिर जबकि इनके पास कयामत आ जाए और इन्हें नसीहत करना कहाँ होगा? बस ऐ नबी, आप यकीन कर लें कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और अपनी लग्जिशों की बख्शिश मांगा करें, यानी जो गलतियां हो जाती हैं उसकी माफी मांगे। और मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों के हक में भी अल्लाह तुम लोगों की आमदोरफ्त की और रहने सहने की जगह को खूब जानता है। दो आयात ईमान से मुतल्लिक, 12 मोहम्मद। इन अल्लाह युदखिलुल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाती जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार। मोमिन के लिए दुनिया में ही जन्नत की बशारत मिल जाती है। फिर मोहम्मद 19, वस्तग़फिर लिज़म्बिक। इस्तिग़फार सिर्फ गुनाहों के लिए ही नहीं, नेकियों की कबूलियत के लिए भी करनी है। बस लोगों को आपके ना अच्छा इस्तिग़फार करे, कहते हैं क्यों हमने क्या किया? भाई अल्लाह के नबी दिन में 100 बार इस्तिग़फार करते थे। तो याद रखिए कि इस्तिग़फार से कई दफा बंदे को नेकियों के मौके भी मिलते हैं। फिर आप देखिए कि इस रुकू में हमने मुनाफिकीन की बात पढ़ी। लिखिए मुनाफिक कौन होता है, एक नई डेफिनेशन दूंगी आपको मुनाफिक की। अच्छे लफ्ज बोलने में सबसे आगे और अमल के वक्त में सबसे पीछे, जंग की बातें करने में सबसे आगे और मैदाने जंग में सबसे पीछे। वो गुफ्तार का गाजी है, किरदार का गाजी नहीं। आपकी वो दोस्त आपको कैसी लगेगी जो दिन रात कहे कोई मौका आया तो बताना, कोई काम हुआ तो बताना, और जहां कोई खुशी का वक्त हो आपके घर बच्चों समेत पहुंची हो और आपको जरूरत पड़े तो ना हो, आपको पसंद नहीं आएगी? मुनाफिक को बर वक्त जब उसकी जरूरत होती है ना तो वो अवेलेबल नहीं होता। एक्सक्यूजेस, बहाने, बस क्या करूं, बस ये है वो है। तो मेरे आपके लिए अमल की बात, जो अल्लाह का पैगाम सुना अनसुना कर दे, अल्लाह उसके दिल पर मोहर लगा देता है, फिर दोबारा ख्याल भी नहीं आता। आपको एक फ्लैट 10 दफा दिखता है ना, तो 11वीं दफा भी दिखे तो आप उसको इग्नोर ही फिर करेंगे। अब ये नहीं कहते चले आज का दिन ही सही, वीकेंड्स में छुट्टी है, नहीं है वीकेंड पे, नहीं, अब तो फिर मैं जब सुनूंगी पूरा ही सुनूंगी, मैं जब जाऊंगी तो पूरा ही जाऊंगी, मैं फजर ना पढ़ूं तो मैं कोई नमाज नहीं पढ़ती। आज ये हमारे मुसलमानों के बट जुमले हैं। क्या पता चला कि जो हिदायत के तालिब हों वही अल्लाह की बात सुनकर अपने ईमान को बढ़ाते हैं। अल्लाह हमें ऐसे लोगों में शामिल करे। फिर फेथ इन एक्शन क्या है कि ख्वाहिशों की पैरवी करने और अपने हर अमल को खूबसूरत देखने वालों का आखिरत में अंजाम बुरा होगा। दीन को कायम करने में जो कमी कोताही हो जाए उस पे अल्लाह से माफी मांग लें, जो कर सकते हैं करें, जो नहीं कर सकते उस पे वस्तग़फिर लिज़म्बिक। हमसे तो नेकियों में भी इतने गुनाह होते हैं, हम तो उनकी भी हिदायत की दुआ करते हैं जिनको लोग फॉलो करते हैं। जरूरत इस बात की है कि बस अल्लाह से हमेशा आजजी का ताल्लुक रखा जाए। फिर अगर रुकू नंबर 3 है, 20 से 28, मुनाफिकाना तर्ज अमल। वयकुलुल्लज़ीना आमनू लौला नुज़िलत सूरा। और जो लोग ईमान लाए वो कहते हैं कोई सूरत क्यों नाजिल नहीं की गई, फिर जब कोई साफ मतलब वाली सूरत नाजिल की जाती है और इसमें क़िताल का जिक्र किया जाता है, तो आप देखते हैं कि जिन लोगों के दिलों में बीमारी है वह आपकी तरफ इस तरह देखते हैं जैसे उस शख्स की नजर होती है जिस पर मौत की बेहोशी तारी हो। बस अफसोस इनके हाल पर, यानी कताल का लफ्ज सुन के इनको मौत पड़ जाती है। ये अंदाज है मुहावरतन, फरमान का बजा लाना और अच्छी बात का कहना, फिर जब काम मुकर्रर हो जाए तो अगर अल्लाह के साथ सच्चे रहें इनके लिए बेहतरी है। और तुमसे ये भी वाइद नहीं कि अगर तुमको हुकूमत मिल जाए तो तुम जमीन में फसाद बर्पा कर दो और रिश्ते नाते तोड़ डालो। ये वही लोग हैं जिन पर अल्लाह की फिटकार है और जिनकी समात और आंखों की रोशनी छीन ली है। देखिए मुनाफिक के लिए कितने सख्त लफ्ज आ रहे हैं, अफला यतदब्बरून अल-कुरान, क्या ये कुरान में गौर व फिक्र नहीं करते। अमला कुलूब नक्फालुहा, या इनके दिलों पर ताले पड़ चुके हैं। जो लोग अपनी पीठ के बल उल्टे फिर गए इसके बाद के इनके लिए हिदायत वाज़ेह हो चुकी। यकीनन शैतान ने इनके लिए इनके इस फेल को खूबसूरत करके दिखाया और इन्हें ढील दे दी है। ये इसलिए कि उन्होंने इन लोगों से जिन्होंने अल्लाह की नाजिल करदा वही को बुरा समझा। तीसरी दफा आ गया जुमला। आज के हर मुनाफिक का यही इशू है। कुरान सबको मानना है, शर्त एक है। कुरान कहते बेपर्दगी जायज नहीं बल्कि सवाब है। सबको कुरान मानना शर्त है कि कुरान कहे कि सूद हलाल है जरूर लिया करो। कोई पाबंदी ना लाए कुरान, कुरान बड़ा प्यारा है, किसी चीज से ना रोके कुरान जैसा अच्छा। इसकी बरकत और इसके नीचे से दुल्हनों को गुजारो और इनको पढ़ के खाली घरों में छोड़ दो 3 दिन तक हाउस वार्मिंग पार्टी से पहले पहले कि नया घर मुसलमान हो जाए। इधर गोरे रह कर गया। आज हम मुसलमानों ने इस कुरान के साथ कुछ कम नहीं किया। इनको नहीं अच्छा लगता ये कुरान। अच्छा क्या कहा? ये कहा कि हम भी अनकरीब बस बातों में तुम्हारा कहा मानेंगे और अल्लाह ताला इनकी पोशीदा बातें खूब जानता है जो अकेले में करते हैं आपस में। अब जरा मौत का मंजर देखिएगा, इनकी कैसी दुर्गत होगी जब फरिश्ते इनकी रूह कब्ज करते हुए इनके चेहरों और इनकी पीठों पर मारेंगे। हदीस में तो बड़ी मुश्किल से जान निकलती है मुनकिर की, उसकी रूह जिस्म में छुपती है और फरिश्ते बड़े बड़े गुर्ज हथौड़े हैमर्स ला ला कर उसके जोड़ों पे मारते हैं ताकि रूह को बाहर निकाला जाए। क्यों? वजह, बंदे तो ये अल्लाह के ही हैं और अल्लाह को तो अपने हर बंदे से बड़ा प्यार है, तो अल्लाह ने वजह आगे ही दे दी है आयत 28 में। ये इस बिना पर कि ये वो राह चले जिससे उन्होंने अल्लाह को नाराज कर दिया। चौथी दफा ये बात आई है और उन्होंने इसकी रजामंदी को बुरा जाना तो अल्लाह ने इनके अमाल इकारत कर दिए है। क्या मैं बोलूं, सब तो ये आयतें खुद बोल रही हैं। हम अपने बच्चों के साथ भी ना मामला ये बर्दाश्त करें जो अल्लाह हमारा मामला बर्दाश्त कर रहा है। और हमारा तो एक बस है ना, हमें तो इजाजत ही नहीं है इन मुल्कों में बच्चे को हाथ लगाने की। तो अल्लाह तो पूरा मुख्तारे कुल है। एक फरिश्ता आए और पर मारे पूरी दुनिया के मुसलमान नहीं सारे जो है वो जमीन के अंदर चले जाए। उसकी कुदरत देखनी है तो मार्फत के सेशंस में देख लें। लेकिन लोगों से डरते हैं, कमजोर लोगों से डरते हैं और अल कवी से नहीं डरते। ईमान से मुतल्लिक एक आयत 20 मोहम्मद, मोमिन की जिंदगी शहादते हक की जिंदगी होती है, इसीलिए फिर अल्लाह उसको ईमान वाली मौत देता है। फेथ इन एक्शन, मुनाफिक जिहाद से जबकि मोमिन जिहाद की तरफ भागता है, यानी वो उससे दूर भागता है मुनाफिक और मोमिन जिहाद की तरफ आता है। मुनाफिकों को शयातीन इनके गुनाह खूबसूरत करके दिखाते हैं। अल्लाह मुनाफिकों से दीन की बातें सुनने और समझने की हैस ही छीन लेता है। जब अमल नहीं करना तो सुने क्यों, ऐसे लोग जुमले बोलेंगे। और अब आगे देखिए जरा सूरत किस तरफ ख़त्म होने की तरफ आ रही है। रुकू नंबर 4:29 से 38, अल्लाह ताला आजमाइश के ज़रिए मुनाफिकों को जाहिर कर देता है क्योंकि इनसे दीन के तकाजे निभते नहीं हैं। अम हसीब अल्लसी नफी कुलूबिहिम मरद, क्या इन लोगों ने जिनके दिलों में बीमारी है, कौन सी बीमारी, निफाक की बीमारी, ये समझ रखा है कि अल्लाह इनके हसद और कीनों को जाहिर ही ना करेगा। और अगर हम चाहते तो इन सबको तुझे दिखा देते, बस तू इन्हें इनके चेहरों से ही पहचान लेता और यकीनन तू इन्हें इनकी बात करने के तरीके से पहचान लेगा। तुम्हारे सब काम अल्लाह को मालूम है, यकीनन हम तुम्हारा इम्तिहान करेंगे ताकि तुम में से जिहाद करने वालों और सब्र करने वालों को मालूम कर लें और हम तुम्हारी हालतों को भी जांचेंगे। सिलेक्शन हो रही है दुनिया में, असॉर्ट कर रहा है अल्लाह, अलग कर रहा, छांट रहा है अल्लाह ताला इस दुनिया में सबको, इधर से उधर और उधर से इधर वालों को। यकीनन जिन लोगों ने कुफर किया और अल्लाह की राह से लोगों को रोका और रसूल की मुखालफत की, इसके बाद कि इनके लिए हिदायत जाहिर हो चुकी, ये हरगिज़ हरगिज़ अल्लाह का कुछ नुकसान न करेंगे, अन करीब इनके आमाल इकारत हो जाएंगे। एक बार फिर धमकी मिल गई, फिर ईमान की पुकार। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर्रसूल वला तुबतिलू आमालकुम। ये दूसरा लफ्ज़ आ गया आमाल के ज़ाया होने का। 33 मोहम्मद। ईमान वालों, अल्लाह की इताअत करो और रसूल का कहा मानो और अपने अमाल को इकारत ना करो। जिन लोगों ने कुफर किया और अल्लाह की राह से औरों को रोका, फिर कुफर की हालत ही में मर गए। यकीन कर लो कि अल्लाह इन्हें हरगिज़ ना बख्शेगा। पस तुम सुस्त यानी कमज़ोर बनकर सुलह की दरख्वास्त पर ना उतराओ, यानी डोंट बी अपोलोजेटिक, जबकि तुम ही बुलंदो गालिब रहोगे और अल्लाह तुम्हारे साथ है। नामुमकिन है कि वो तुम्हारे आमाल को ज़ाया कर दे। क्या अल्लाह के बातें, फिर भी न जाने हम तो ये हमारा नसीब। वाकई दुनिया की ज़िंदगी सिर्फ खेल कूद है, और अगर तुम ईमान ले आओ और तकवा इख्तियार कर लो तो अल्लाह तुम्हें तुम्हारे अजर देगा और वह तुमसे तुम्हारे माल नहीं मांगता। यकीन करें, इन आयतों को पढ़ते हुए दिल पता क्या करता है, किसी कपड़े के पीछे अपने मुंह को छुपा ले। ऐसे लगता है अल्लाह ने किसी के पेट से कपड़ा उठा दिया। कितनी बड़ी हकीकत। अल्लाह कहता है, मैं तुमसे अगर माल मांगूं तो तुम क्या करोगे? अगर वो तुमसे तुम्हारा माल मांगे और जोर देकर मांगे, जैसे फंड रेजिंग में अक्सर मांगा जाता है, ज़बरदस्ती बाय हुक और बाय क्रुक, तो तुम उस वक्त बखीली करने लगोगे और वो बखीली तुम्हारे कीने जाहिर कर देगी। खबरदार, तुम वो लोग हो कि अल्लाह की राह में खर्च करने के लिए बुलाए जाते हो तो तुम में से बाज़ बखीली करने लगते हैं, और जो बुखल करता है वो तो दरअसल अपनी जान से बखीली करता है। अल्लाह गनी है, रखो अपने पास, उसको नहीं ज़रूरत। गनी वो होता है जिसको किसी की ज़रूरत ना हो, और तुम फ़कीर और मुहताज हो, और अगर तुम मुँह फेरोगे तो वह तुम्हारे बदले तुम्हारे सिवा और लोगों को लाएगा, फिर वो तुम जैसे ना होंगे। कोई मासी या कोई कह लीजिए कि कोई खादिमा बहुत ही तंग करे ना, आपकी नरमी का फ़ायदा ले, तो आप कहते हैं अच्छा अब आप आराम कीजिए, मैं किसी और को बुला लूँगी। आप अपने बच्चों को कभी चिढ़ के कहते हैं अच्छा जाओ मैं फलां को अपना बेटा बना लूँगी, तो मेरी बात ना मानो? इतनी धमकी, इतनी सख्ती इन जुमलों में बोन मुस्लिम्स के लिए। तुम्हें दीन के तकाजे चुभते हैं, जाओ हमें नहीं तुम्हारी ज़रूरत, तुम एक दफ़ा ना करके देखो, हम कभी तुम्हें मौका नहीं देंगे। यानी इतनी सख्ती है इन आयतों में कि आप सिर्फ इनके लफ्ज़ों पे गौर करें तो आप उसको महसूस करेंगे। दो आयात ईमान से मतलब, 33, फ़िक्रे आखरत हो तो इत्तबाए रसूल भी करेंगे और पैरवी भी करेंगे। दोनों का फ़र्क पता है आपको? इत्तबा कहते हैं फुट स्टेप पे चलना, किसी के नक्शे कदम है उसी के ऊपर आप चलते जाएं। इसके बरक्स इतात क्या होती है? दिल की खुशी से किसी बात को मानना। आपके मेरे लिए जो अपने लिए मांगने की दुआ में से एक दुआ है ना, वो क्या है कि अल्लाह मुझसे नबी की इत्तबा भी करवा ले और मुझे नबी की बात कहे बगैर मानने की तौफीक भी दे। फिर सूरत मोहम्मद की आयत 36 का टॉपिक, उसमें क्या मैसेज है? तकवा आ जाए तो इंसान अपनी हर चीज अल्लाह की राह में लगा भी देता है, फिर भी डरता है कि कबूल हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि वल्लाहुल गनीयु व अंतुमुल फुकरा। बड़ा बड़ा लिख लें, अल्लाह को हमारी नहीं, हमें अल्लाह की जरूरत है। तो फेथ इन एक्शन क्या है कि लोगों को खुश करने से ज्यादा अल्लाह की खुशी को मुकद्दम रखना। दीन पर कोई मुश्किल वक्त आए तो बुजदिली की बजाय इस्तकामत से दीन पर जमे रहना, अल्लाह के नाम पर देते हुए कंजूसी से काम नहीं लेना। अल्लाह हमारे दिलों को खोल दे। मैं कहती हूँ सिर्फ जितना हम अपनी शादियों पे खुशी से लगाते हैं, अल्लाह उतना ही दीन पे लगाने वाला बना दे। जितनी खुशी से अपने घरों पे लगाते हैं, इतना अल्लाह दीन के घरों पे लगवा दे। यही कर दे, ये भी कुछ नहीं है। तो बहरहाल मजबूत स्ट्रॉन्ग मैसेज की सूरत थी मोहम्मद,